20 अगस्त शनिवार का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। उत्तर प्रदेश और झारखंड में सैलाब, लाखों लोग प्रभावित, सैकड़ों घर तबाह। अकेले इलाहाबाद में ही कम से कम 40 गांव पूरी तरह डूबे।
ऑलमोस्ट अब 75 विलेजेस हो गए जो कि फ्लड के चपेट में आ गए, और मतलब उसमें से 675 विलेजेस में ऑलमोस्ट 40 विलेजेस हैं व्हिच आर मरूड।
सुनवाएंगे एक रिपोर्ट झारखंड से भी, बिहार के गोपालगंज से खास रिपोर्ट, वहां जहरीली शराब से हुई कथित मौतों पर। और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता, साथ ही जीता हिंदुस्तानियों का दिल। मैच के बाद कहा,
इट वाज ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा था मेरे लिए, एंड इट्स आई एम जस्ट फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि फर्स्ट ओलंपिक्स और मैंने मेडल जीती, तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। झारखंड में दो दिन के दौरान बाढ़ और बाढ़ से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 6 जिलों में स्थिति चिंताजनक है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, केन और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी और इलाहाबाद में नदी किनारे के इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। यहाँ प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। अमेरिका की एक कोर्ट ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से कहा है कि विदेश मंत्री रहते हुए निजी ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर दायर मामले में वो लिखित जवाब दाखिल करें। जुडिशियल वॉच नाम के संगठन ने इस मामले में विदेश मंत्रालय पर केस किया है और हिलेरी से शपथ पत्र दाखिल करने की मांग की है। FBI पिछले महीने इस मामले की जांच बंद कर चुकी है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन चेयरमैन पॉल मैनफोर्ड ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर यूक्रेन के अब्दस्त राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की पार्टी से लॉबिंग के लिए गुप्त तरीके से धन लेने के आरोप लगे थे। पॉल मैनफोर्ड का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यूक्रेन की एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रमुख डारिया मानझुरा ने बताया कि आखिर उन्होंने मैनफोर्ड को किए गए भुगतान से जुड़े कागजात सार्वजनिक क्यों किए। उन्होंने कहा, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए पॉल मैनफोर्ड मुद्दा नहीं है। निजी तौर पर उनकी जांच नहीं की गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर सूचनाओं से जांच प्रक्रिया में दखलंदाजी नहीं होती है तो जांचकर्ता इसे जारी अथवा प्रकाशित करने के बारे में फैसला कर सकते हैं। पॉल मैनफोर्ड विदेशी हैं, हमने फैसला किया कि हम इस सूचना को प्रकाशित कर सकते हैं। ये थे यूक्रेन की एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रमुख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के हास्का शहर के लोगों का कहना है कि लगातार दूसरे दिन हुए हवाई हमलों के बाद हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। हास्का सीरिया की कुर्द मिलिशिया के नियंत्रण में है। सीरिया की सेना ने एक बयान में कहा है कि उसने कुर्द सेना के उकसावे के बाद कार्रवाई की है। अमरीका का कहना है कि सीरियाई सेना की ओर से निशाना बनाई जा रही गठबंधन सेना की सुरक्षा के लिए विमान रवाना कर दिए गए हैं। रियो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के बजट में बड़ी कटौती की गई है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का कहना है कि खेलों का आयोजन होगा, लेकिन आयोजकों ने पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं है। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं का स्वागत है बीबीसी हिंदी रेडियो की सुबह की पहली सभा में, फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश से पैदा हुए सैलाब के हालात से। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश और फिर बांध से छोड़े गए पानी की वजह से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। लाखों लोगों को शिविर में रहना पड़ा है और सैकड़ों एकड़ पर लगी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित जिलों में बहराइच, इलाहाबाद, वाराणसी, सोनभद्र और गोंडा शामिल हैं। लखनऊ से हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र ने ये रिपोर्ट भेजी है।
पिछले कई दिनों से हो रही बारिश, नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी और दूसरे राज्यों से छोड़े जा रहे पानी के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थिति काफी भयावह हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बहराइच में बाढ़ से दर्जनों घर नष्ट हो गए हैं और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर में भी बाढ़ आ गई है। बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से इलाहाबाद और वाराणसी के कई निचले हिस्से जलमग्न हो गए हैं। इलाहाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार कहते हैं कि स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है।
जो कि फ्लड के चपेट में आ गए और मतलब उसमें से 675 विलेजेस में है, ऑलमोस्ट 40 विलेजेस हैं व्हिच आर मरूड।
इलाहाबाद, वाराणसी समेत कई जगहों पर बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। इलाहाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार का कहना था कि सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इलाहाबाद और वाराणसी में बाढ़ का पानी कई मोहल्लों में भर गया है और लोग बाहर रहने को मजबूर हैं। इलाहाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उधर वाराणसी में गंगा किनारे के कई घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। भारी बारिश की वजह से एक घर ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। सोनभद्र जिले में रेहंद समेत कई बांध बाढ़ के पानी से लबालब भर गए हैं। वहीं गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों गाँव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और हजारों एकड़ फसल पानी में डूब कर बर्बाद हो रही है। बांदा में केन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांदा के जिलाधिकारी योगेश कुमार कहते हैं कि प्रशासन स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा है।
हम नजर बनाए हुए हैं, सारे जितने जो गांव जो है केन नदी के अलोंग सिचुएटेड हैं, उनमें सभी को खाली करा के इधर राहत चौकियां अधिकतर स्कूलों में या ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती है उसमें शिफ्ट कराया गया है। हमारे पास लगभग 100 लेखपाल अभी भर्ती हुए थे, 100 के 100 लेखपालों को इन्हीं तहसीलों में इन्हीं गाँव में।
इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं सामान्य तो कहीं तेज बारिश होने की उम्मीद है।
ये थे समीर आजमत मिश्र। भारी बारिश ने झारखंड के कम से कम 6 जिलों में तबाही मचा दी है। पिछले 36 घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन छोटे बड़े पुलों के टूट जाने से सैकड़ों गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय और प्रखंड से टूट गया है। दर्जनों छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। पलामू और गढ़वा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रामगढ़ और गढ़वा में NDRF की टीम भी भेजी गई है। वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं नीरज सिन्हा।
सुदूर गांव की यह महिला अकेली नहीं जिसे बाढ़ ने मुश्किलों में डाला है। चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार में बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो रही हैं और जान माल का नुकसान भी जारी है। गांव के गांव पानी से घिरे हैं। गढ़वा में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। गढ़वा की DC नेहा अरोड़ा ने बताया है। फसलों की बर्बादी देख लोग विचलित हैं। सोन नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय ग्रामीण योगेश कुमार की जुबानी।
सोन नदी का जलस्तर बराबर बढ़ते जा रहा है। धान के खेत और मक्का रहर जो है काफी बर्बाद हो चुका है और जो बचा हुआ है उस फसल के खेतों में भी पानी तेजी से भर रहा है। गांव के लोग दहशत में है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बचाव कार्य या कोई राहत कार्य के लिए या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में नहीं आए हैं।
कई इलाकों में देर रात घरों में पानी घुस जाने से बड़ी आबादी संकटों से घिर गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे गढ़वा के स्थानीय पत्रकार ओम प्रकाश पाठक से हमने फसलों की बर्बादी के बारे में पूछा।
मकई, तेल, ये सब बाढ़ के पानी में डूबने के कारण बर्बाद हो गए हैं और खासकर सोनकटिया इलाके में भारी नुकसान हुआ है। लगभग 30 से अधिक गाँव जो है वो अधिक बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं।
पलामू प्रमंडल के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के पानी से जनजीवन बेहाल है। रजरप्पा की प्रसिद्ध छिन्न मस्तिका मंदिर परिसर में भैरवी की तेज धार में दर्जनों दुकानों के बह जाने की खबर है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश से राहत के संकेत तो दिए हैं पर 2 दिनों बाद कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
और अब रुख करते हैं बिहार का। गोपालगंज जिले में मंगलवार की रात क्या हुआ था? जिन परिवारों के सदस्य घटना से प्रभावित हुए वो प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस दिन के बारे में भी बयान करते हैं जब उनका प्रिय घर वापस आया। शराब की बू मुंह से बाहर आ रही थी, अस्पताल लेकर जाने की जल्दी थी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में देर में उस शख्स की मौत हो गई। मनीष शांडिल ने गोपालगंज का दौरा किया।
आजू बाबू का दूधावा लागत बाटे हो।
गोपालगंज शहर के नोनिया टोली के पीड़ित परिवारों का दर्द उनके परिजनों के मौतों का जिक्र करते ही कभी चीत्कार की आवाज तो कभी आंसू के रूप में सामने आ रहा है। किसी ने अपना बेटा खोया है, तो किसी ने पति, तो किसी ने नातिन। विजय कुमार चौहान के 28 साल के जवान बेटे शशिकांत चौहान की भी मौत मंगलवार की रात को हुई थी। उस रात की घटना के बारे में विजय बताते हैं।
दारू की स्मेलिंग आ रही थी मुंह से, तो हल्का हल्का उसके पेट में दर्द होने लगा था, उल्टियां होने लगी थी। मैंने पड़ोस के डॉक्टर से दिखाया, पड़ोस के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले फिर सदर अस्पताल गोपालगंज में दिखाए, तो सदर अस्पताल गोपालगंज में उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट चला, फिर उस लोगों ने रेफर कर दिया। रेफर करने के बजाय तुरंत आधे घंटे बाद वहीं पर उसके स्पॉट पर एक्सपायर करके लगा।
शशिकांत घटना के दिन अपने ननिहाल में थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मामी नैना देवी भी उनके साथ अस्पताल गई थीं।
हम लोग बोले कि दारू पिए हैं और जल्दी इलाज करिए, तो वो बोले कि दारू नहीं पिया है और फिन खाया है, ले जाओ गोरखपुर जल्दी, नहीं बचेंगे। हाथ पकड़ पकड़ के हटा रहे थे, दारू पीने के कहते रहे कि दारू नहीं पिए हैं, हम लोग इलाज नहीं करेंगे।
स्थानीय मीडिया में भी ऐसी खबरें आई हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की थी। नोनिया टोली की तरह ही शहर के वार्ड नंबर 27 और हरखुआ मोहल्ले के भी लोग इस घटना के शिकार हुए हैं। वार्ड नंबर 27 के रामू राम की मौत बुधवार की सुबह हुई। 35 साल के रामू के भाई प्रदीप का कहना है,
दारू बंद रहती तो ये शराब पी के मरे होते हैं। शराब की पहले से ही फैक्ट्री लगी हुई थी उस खजूरबानी में, वो कोई वहाँ पे कोई देखने रखने वाला भी नहीं था। लगता था कि पुलिस वाले को भी घुस दिया जाता था, इसके लिए वो चालू था वहाँ पे, कोई रोक नहीं थी, दारू तो ऐसा ही मिलती थी वहाँ पे।
वहीं जिला प्रशासन इलाज में लापरवाही सहित तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी राहुल कुमार का कहना है कि
जो खजुरबन्नी जो एरिया है, वहाँ से जब जब हम लोग को इनपुट मिला था तब तब वहाँ पे कार्रवाई की गई थी। मई महीने में भी वहाँ पे छापेमारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, और अभी बहुत रिसेंटली अगस्त महीने में भी 7 तारीख को वहाँ पे रेड किया गया। लेकिन चूंकि ये रिपीटेड घटनाएं वहाँ घटी है उसी क्षेत्र में, इसी कारण जो SP साहब हैं जिले के, उन्होंने नगर थाने पे कार्रवाई की है, और कुछ और कार्रवाइयों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कम्युनिटी फाइन भी करेंगे, कन्फिस्केशन भी करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे।
इस घटना में पीड़ित 4 लोगों का इलाज अभी पटना में चल रहा है। इनमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की भी खबरें हैं। इस मामले में कुल 14 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से मुख्य अभियुक्त सहित 7 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
बिहार के गोपालगंज से मनीष शांडिल।
BBC Olympics Rio update.
पीवी सिंधु रियो में शुक्रवार को हुए फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक नहीं ला पाई। रजत तो उन्होंने परसों के खेल में ही पक्का कर लिया था। सिंधु ने अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर गेम उनके हाथ से निकल गया। हालांकि उनका और उनके कोच गोपीचंद इससे निराश नहीं दिखे। उनका कहना था, ओलंपिक में सिल्वर लाने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। रियो से नॉरिस प्रीतम की रिपोर्ट।
सिंधु फाइनल में कैरोलिना मरीन से भले ही हार गई हों, उनका सिल्वर मेडल भी भारत के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा। जिस तरह से 21 वर्षीय सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ मुकाबला किया वो काबिले तारीफ था। अपने पहले ओलंपिक में सिंधु को मेडल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो 7वें आसमान पर हैं।
मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है, तो आई डिडंट थिंक दैट आई वुड गेट अ मेडल, बट देन आई एम रियली वेरी सैटिस्फाइड विद सिल्वर। एंड मतलब हर एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। एंड उसके बाद ड्रॉ बहुत टफ था मेरे लिए। एंड मैंने सिर्फ एक मैच बाय मैच सोच रही थी, एंड आई बहुत बिलीव किया मैंने, एंड मेरा कोच भी मुझ में मतलब बहुत बिलीव किया, एंड वी केप्ट ऑन गोइंग, एंड फाइनली मैंने फाइनल्स तक पहुंची। एंड बहुत फॉट किया था पर कैरोलिना भी बहुत अच्छा खेली एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स इट वाज लाइक एनीबडीज गेम एंड इट वाज ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा था मेरे लिए एंड इट्स आई एम जस्ट फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि फर्स्ट ओलंपिक्स और मैंने मेडल जीती तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग.
कोच गोपीचंद भी सिंधु के प्रदर्शन से खुश हैं. उनका मानना है कि सिंधु के खेल में कोई बड़ी गलती तो नहीं थी लेकिन उन्हें अभी और अनुभव की जरूरत है.
आई थिंक वेरी हैप्पी विद द वे शी हैज परफॉर्मड एंड शी हैज मेड अस ऑल प्राउड एंड वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट शॉट. मारिन वन टुडे ठीक है बाय अ लिटिल बिट मे बी अ 10 ऑल. आई थिंक टू पॉइंट्स ऑन द ईदर साइड कुड हैव चेंज्ड द मोमेंट. गलती कहीं नहीं. आई थिंक शी नीड्स अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस. दैट चेंज ऑफ एंड्स का जो बात होती है एट दैट टाइम आई थिंक दोज टू थ्री पॉइंट्स आर वेरी क्रिटिकल. ड्राफ्ट इन जनरल द होल फीलिंग एंड द एटमोसफियर एंड द स्मॉल ब्रेक ऑफ रिदम आई थिंक शी नीड्स टू गेट ओवर दैट.
सिंधु को खुशी थी कि उनके मैच को देखने वालों में कई बड़ी हस्तियां भी थीं जिसे वो अपने लिए फख्र की बात मानती हैं.
इंडिया से आए थे मिनिस्टर्स एंड नीता अंबानी इवन शी हैड कम तो मैंने मिला था एंड इट्स बीन अ ग्रेट हॉनर दैट कंग्रेचुलेट किया क्योंकि मैंने फर्स्ट इंडियन वुमेन सिल्वर मेडल एंड इट्स बीन अ वंडरफुल फीलिंग क्योंकि ओलंपिक्स फर्स्ट ओलंपिक्स में मेडल लेके आना इट्स अ डिफरेंट फीलिंग.
जब सिंधु का मैच चल रहा था तो हॉल में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग अमरीका और अर्जेंटीना से भी आए हुए थे. सिंधु के हर पॉइंट पर भारत जिंदाबाद और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लग रहे थे. सिंधु ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया.
आई थिंक सपोर्ट हैज बीन रियली ऑसम क्योंकि इट फील्स लाइक अ होम ग्राउंड क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छा था. आई एम वेरी थैंकफुल टू द क्राउड क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट किया था क्राउड ने एंड आई थिंक इट्स बीन रियली वंडरफुल.
सिंधु के मैच की वजह से शायद बहुत कम लोगों को याद रहा हो कि और भी कई भारतीय आज मैदान में थे. इनमें संदीप कुमार ने 50 किलोमीटर इवेंट में 35वां स्थान लिया और महिलाओं की 20 किलोमीटर वॉक इवेंट में खुशबीर कौर 54वें स्थान पर रहीं. नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक्स, BBC ब्राजील.
फाइनल में हारने के बावजूद भी पीवी सिंधु की जमकर तारीफ हो रही है और वो लोग उनके जज्बे को सलाम या दुआ दे रहे हो ना और अगली बार ये भी कह रहे हैं कि वो स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे. भारत में अलग अलग जगहों पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आदेश कुमार गुप्त की इस रिपोर्ट में.
रियो में जारी 31वें ओलंपिक खेलों में कल भारत की पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में भले ही स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई लेकिन जब वो अपना दमखम बैडमिंटन कोर्ट पर दिखा रही थी तब भारत के लाखों करोड़ों लोग सांस थामे उनका मुकाबला देख रहे थे. बेंगलुरु में मौजूद आमिर हबीब को लगा कि सिंधु का खेल तेज तर्रार नहीं था.
कैरोलिना मैरन जो है लेफ्टी है उसके लेफ्ट को ही मार लेगी थी उसके राइट को अगर मारती ज्यादा पॉइंट्स भी मिलते और स्मैशेस भी ज्यादा मारना था वो.
लेकिन बेंगलुरु में ही मौजूद सुदीप्तो चटर्जी को सिंधु की हार का कोई गम नहीं है.
पहली गेम जब वो जीती तो ऑब्वियसली हमारी उम्मीद भी बहुत बड़ी थी. जो वर्ल्ड नंबर वन है उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार खेली है. सिंधु के लिए ये पहली मौका है जब वो ऐसे बड़े स्टेज पे खेल रही है तो शायद उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफी नहीं था. गोल्ड मेडल नहीं जीती है तो मेरी नजर में तो वो चैंपियन है.
कमाल की बात है कि पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद का भी ऐसा ही मानना है.
इमीडिएटली पोस्ट द मैच मैं इतना ही बताया कि ये मत सोचना कि आपने मैच हारा है ये हमने मेडल जीता है.
मुंबई की प्रज्ञा झा ने खुले दिल से सिंधु की तारीफ की.
मैं बहुत खुश हूँ कि देश को एक सिल्वर मेडल मिला. आई थिंक कितने सालों के बाद मेरे ख्याल से ये पहला है बैडमिंटन में जो सिल्वर मिला है इंडिया को तो हम सबकी तरफ से सिंधु को बहुत बहुत मुबारकबाद. हमें बहुत अच्छा लग रहा है बहुत प्राउड फील हो रहा है.
पटना में भी सिंधु का मैच देखने वालों की कोई कमी नहीं थी.
मैं अनमोल ऋषभ सिन्हा. गोल्ड की उम्मीद है हमें अगर जीत जाती है तो भारत का बहुत नाम होगा.
जी मेरा नाम संकल्प कुमार है. सिंधु जीतती है तो बहुत बड़ी बात है हारती भी है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँची और जीती है तो हमें बहुत खुशी होगी.
जी मेरा नाम निखिल कुमार अमन है. अगर सिंधु जीतती है तो बहुत अच्छा बात होगा अगर हार गई तो वो फाइनल में पहुंची ये बहुत बड़ी खुशी की बात.
वहीं सिंधु के पिता पीवी रमन्ना ने माना कि कैरोलिन मारिन जीत की हकदार थी लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में सिंधु उम्मीदों को पूरा करेगी.
कैरोलिना हैज प्लेड एन एक्सीलेंट गेम एंड शी ट्रूली डिजर्व्स द चैंपियनशिप गोल्ड मेडल. हाउएवर वी अश्योर यू दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ हर कोच इन द कमिंग इयर्स सिंधु विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल एंड कीप्स द होप्स ऑफ द ऑल द इंडियंस हाई.
गुवाहाटी में मौजूद लोगों के जोश में भी कोई कमी नहीं थी.
नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, क्योंकि सिंधु ने अपना जिस तरह से खेल का प्रदर्शन आज किया और उन्होंने जिस तरह से मरीन को टक्कर दी, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा, वो भारत के लिए लाएगी।
एथेंस ओलंपिक में भारत को निशानेबाजी में रजत पदक दिलाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी अब सुन लें।
बधाई देना चाहूंगा पीवी सिंधु को, उनके पूरे परिवार को, पुलेला गोपीचंद को, पूरी एकेडमी को, कि उनके इस रजत पदक से कई और स्वर्ण पदक भारत की तरफ आए, ऐसा उन्होंने जो इंस्पिरेशन दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
सिंधु भले ही चांदी के पदक को सोने में नहीं बदल सकी, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि योगेश्वर दत्त भी भारत को कोई पदक दिलाए, ताकि भारत कम से कम बीजिंग के पदकों की संख्या तक तो पहुंचे।
और अब रुख नेपाल की तरफ। नेपाल के उप प्रधानमंत्री बिमलेंद्र निधि को प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपना विशेष दूत बनाकर भारत भेजा है। बिमलेंद्र यहाँ प्रचंड की यात्रा के लिए माहौल बनाने और सहयोग की संभावनाएं तलाशने आए हैं। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री प्रचंड ने पहली विदेश यात्रा पर चीन गए थे, और इसके साथ ही भारत के प्रति उनका रवैया कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं माना गया था। बीते महीनों में भारत नेपाल के संबंधों में भी तनाव देखा जाता रहा है, और प्रचंड के इस रुख को भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की दिशा में कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रचंड की इस पहल के पीछे क्या कूटनीति है, क्या रणनीति है, निखिल रंजन ने नेपाल में भारत के पूर्व उच्चायुक्त राकेश सूद से पूछा।
मैं समझता हूँ कि जब पिछली बार उनकी सरकार गिरी थी तो उसके बाद उन्होंने भारत को काफी बुरा भला कहा था और भारत को दोषी कहलाया था। हालांकि ये 2009 की बात, उसके पश्चात उन्होंने कई दफे ये कहा कि हाँ हमसे कुछ भूल हुई थी और हमको ये नहीं करना चाहिए। तो अब की बार वो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और उन्होंने जो अपने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं बिमलेंद्र निधि, उनको भेजा है हिंदुस्तान। बिमलेंद्र निधि तराई से हैं, मधेसी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि विदेश नीति के साथ साथ उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि संविधान को किस तरह लागू किया जाए फेडरलिज्म के तौर पे।
लेकिन इस वक्त जो भारत से रिश्ते खराब होने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जैसा कि ऐतिहासिक रूप से रहा है, क्या वजह है तनाव की या जो भी गिरावट रिश्तों में आई है उसकी?
जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, वो शायद समझे नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, और वो उन्होंने ऐसा रुख लिया जो अक्सर मैंने देखा है कि नेपाल में अक्सर लीडर जो हैं वो जब वो अपनी मजबूरी जो है वो जाहिर नहीं करना चाहते या अपनी कमजोरी नहीं जाहिर करना चाहते, वो किसी बाहरी ताकत के ऊपर एक किस्म का ब्लेम कर देते हैं, और उसमें हिंदुस्तान नेचुरली इंडिया का सबसे बड़ा रोल है, तो इसलिए इंडिया को अक्सर वो ब्लेम सहना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ओली जब यहाँ हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे कि वो किस तरह संविधान का संशोधन करेंगे और किस तरह मधेसी, जनजाति, थारू और जो ऐसे समुदाय हैं जो कि एक किस्म से अपने आप को वंचित समझते हैं, किस तरह उनके जो एस्पिरेशंस हैं एड्रेस करेंगे, पर उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए और एक तरह से तनाव जो था वो बढ़ता ही गया, और बार बार उस तनाव से हटने के लिए उन्होंने चीन का सहारा लिया। मेरे ख्याल से प्रचंड ये समझते हैं कि वो जो तरीका था वो सही नहीं था, और शायद वो दोनों तरफ पर जब उन्होंने यहाँ पर बिमलेंद्र निधि जो उनके उप प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं उनको यहाँ भेजा है एक खास स्पेशल एनवॉय के तौर पे, साथ साथ उन्होंने अपने दूसरे उप प्रधानमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं केवी महारा जो माओवादी पार्टी के हैं उनको उन्होंने चीन भी भेजा है, तो इसलिए वो अभी भी अपनी तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश में।
नेपाल के लिए ये बैलेंस बनाना क्या आसान होगा?
देखिए ऐतिहासिक तौर पर या भौगोलिक तौर पर अगर आप देखें तो नेपाल का रुझान जो है वो भारत की ओर है। आप देखिए प्रचंड का नाम क्या है, पुष्कमल दाहाल, उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे उनसे पहले, उनका नाम क्या, खड़गा प्रसाद शर्मा, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, सुशील कोइराला, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, खील राज रेग्मी, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, बाबू राम भट्टाराय, किसी का कोई मैंने चाइनीज नाम तो लिया नहीं। अच्छा, अब उनके जो त्योहार क्या है, वो है दिवाली है, दशहरा है, होली है, वो भोजन क्या करते हैं, दाल भात खाते हैं, तरकारी खाते हैं, वो ठीक है आजकल के जमाने में सब लोग नूडल खाते हैं वो एक अलग बात, पर एक तरह से जो एक ऐतिहासिक और भौगोलिक वातावरण है उसको आप नकार नहीं सकते।
भारत नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपना दूत भेजा भारत, उस पर बात कर रहे थे भारत के पूर्व उच्चायुक्त नेपाल में राकेश सूद। और अब एक नज़र डालते हैं कि अखबार क्या कह रहे हैं।
जी फैजल साहब, अखबारों में सिल्वर मेडल जीतने वाली गोल्डन गर्ल का चर्चा है, ये मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूँ नवभारत टाइम्स की, और बड़ी दिलचस्प सारे अखबारों ने हेडलाइन लगाई है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बहुत कुछ मिलती हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है दिल है हिंदुस्तानी, और टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी और सिंधुस्तानी,
फिर सिंधुस्तानी, दोनों ने सिंधुस्तानी लगाया, एक ने फिर भी लगाया, दूसरे ने फिर भी नहीं लगाया। इंडियन एक्सप्रेस ने सिर्फ लिखा है थैंक यू, जो 92 साल के बाद पहला सिल्वर भारत के लिए जीता है एक महिला खिलाड़ी ने, पीवी सिंधु, उनकी चर्चा हर अखबार में है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके पिता से हुई बातचीत को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक सिंधु के पिता पीवी रामना कहते हैं कि पदक का कोई भी रंग हो, ओलंपिक मेडल जीतना आसान नहीं है। इसके साथ एक अखबार ने ये भी बताया है, हिंदुस्तान ने, कि जो एक पदक भारत को मिला था उसके बाद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी कि 119 सदस्यीय भारतीय ओलंपिक दल की एक सदस्य ने कांस्य पदक जीता है, इस पर भारतीयों की प्रतिक्रिया देखिए कि मानो उन्होंने 20 स्वर्ण जीत लिए हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये पदक मेरे लिए 1000 स्वर्ण पदकों के बराबर है। साक्षी के पदक के बारे में ये कहा गया था और ये हिंदुस्तान ने इसको एंकर खबर बनाया है। इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि भारत और भारत ने जो चरमपंथ पर दो तरफा बातचीत के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा रखा था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को याद दिलाया है और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा की बात की है। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने बलूचिस्तान के मामले पर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था उसकी सराहना की है। द हिंदू ने इस अखबार को लिया है और करजई ने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान के उकसावे का जवाब देने का हर अधिकार है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब ये जानते हैं कि आज का इंडिया बोल का विषय क्या होगा।
बीबीसी इंडिया बोल।
अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने अकेले जितने पदक जीते उतने भारत 100 साल में नहीं जीत पाया। छोटे छोटे गरीब मुल्कों से निकलते हैं उसेन बोल्ट जैसे खिलाड़ी। भारत में न पैसों की कमी है न खिलाड़ियों में दमखम की। पदक जीतने पर बरसता है पैसा, फिर भी क्यों ओलंपिक की चुनौती में चित्त हो जाता है भारत। इस बार इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 20 अगस्त शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अमेरिका की एक कोर्ट ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से कहा है कि विदेश मंत्री रहते हुए निजी ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर दायर मामले में वो लिखित जवाब दाखिल करें। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन चेयरमैन पॉल मैनफोर्ट ने इस्तीफा दे दिया है। सीरिया के हास्का शहर के लोगों का कहना है कि लगातार दूसरे दिन हुए हवाई हमलों के बाद हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। हास्का सीरिया की कुर्द मिलिशिया के नियंत्रण में है। रियो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के बजट में बड़ी कटौती की गई है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने, फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।